नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्फू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों के समक्ष प्रार्थना की। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनात्सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति में द्विपक्षीय सहयोग और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। इस अवसर पर भारत ने ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भूटान को 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण सहायता की घोषणा की। भूटान में अब तक भारत के सहयोग से 5 जल विद्युत परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात भूटान नरेश द्वारा आयोजित शाही भोज में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह भूटान के राष्ट्रपिता, वहां के चौथे नरेश ड्रूक ग्यालपो जिग्मे सिंगये वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना होने से पहले तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन कालचक्र समारोह में भी हिस्सा लेंगे। भूटान नरेश ने दिल्ली विस्फोट की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने भी दिल्ली में लाल किले के पास हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायल पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट की घटना में शामिल सभी लोगों को जांच एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने घटना की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी है। घटना के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बृहस्पतिवार तक यात्रियों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे वहां सुरक्षा जांच में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड DIAL ने यात्रियों को परामर्श जारी करके कहा है कि वे इसी अनुसार यात्रा पर निकलने की योजना बनाएं और अंतिम समय में किसी असुविधा से बचने के लिए समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्रूमा बोकोस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू अफ्रीका यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना पहुंच गई हैं। वे 13 नवंबर तक बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्रूमा बोको ने गैबरोन हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति मुर्मू का 21 बंदूकों की सलामी के साथ स्वागत किया गया तथा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज कनाडा के विदेश मंत्री सुश्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर G7 विदेश मंत्रियों की आउटरीच पार्टनर्स के साथ बैठक में कनाडा के ओंटारियो का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉ जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में 69% से अधिक मतदान हुआ। कटिहार जिले में सबसे अधिक 79.10% मतदान हुआ है। किशनगंज में 78.16%, पूर्णिया में 76.45%, सुपौल में 72.82%, पूर्वी चंपारण में 71.57% और बांका में 70.75% मतदान हुआ है। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ है। भारत ने ब्राजील के बेलम में आयोजित 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में समता, जलवायु न्याय और बहुपक्षवाद की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय प्रतिनिधि ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 स्पर्धा में भारत ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए पदक हासिल किए। सम्राट राणा ईशा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीते। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।